తిమిరందశ జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుమిళితం జైన తస్మై శ్రీగురవే నమః శ్రీచైతన్న మనఃవిష్టామిస్థాపితం జిన భూతలే స్వయం రూప కదామయం దదతి స్వపదంతికం వందేహం శ్రీగురా శ్రీజతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవం శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదం సహగణ లలిత శివ సఖన్వితం చ నమయం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పార్షద రిషదారిణే వంచాకల్పతరుపశ కృపా సింధువైవ చ పతితానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః నమో మహావదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయ కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరతిశే నమః శంకర్షణ కారణతయశై గర్భదశై స వాయుర్దిశై శిశసదసం సకలాస నిత్యానందక్రామం శరణం మమస్తు ఆజనులంబితభుజౌ కనకావధాతౌ సంకీర్తనైకపితరౌ కమలాయుతాక్షౌ విశ్వంబరో ద్విజభరో జుగధర్మ పాలో వందే జగత్ ప్రియకరో కరుణాయవతారో అనర్పిత చరిం చిరాద కరుణయావతీర్ణ కలో సమర్పయితమున్నతోజ్జ్వలరసం సభక్తి శ్రియం హరిపురాట సుందర దుతి కదంబ సందీపిత సదా హృదయ కందరి స్ఫురతు వాసచినందన ఆనందలీలాస విగ్రహాయ హేమావతిభ్య సవిసుందరాయ తస్మై మహాప్రేమ రసప్రదాయ చైతన్య చంద్రాయ నమో నమస్తే హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పదే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియే జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీయాద్వైత గదాధర శివ సది గౌరవక్తవింద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే ఓం నమ భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమ భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమ భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృతం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం तथाजायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती रुत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुखं करोति वाचलं पंगुं लंघयति गिरिजत्कृपतमं वंदे परमानंदमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीशं नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय वदलसिंहदेशवक्षुमतिनामिने हरे कृष्ण श्रीमद्भागवतम षट्स्कंध सप्तम अध्याय षष्ठ त्रिंशत श्लोक हम लोग अध्ययन करके श्रवण करेंगे। ये अध्याय का नाम इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। सब लोग बोलिए
अकिंचनानां हि धनं शिलांचनम् तेने हो निवर्तित साधु सकृह कथं विगर्जनो करमधीशरा पुरोदशं रिष्यति येन दुर्मतिः।
हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद के तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य सब लोग बोलिए अकिंचनानां उन पुरुषों का जिन्होंने संसार से विरक्त होने के लिए तपस्या करनी स्वीकार की है ही निश्चय ही धनम संपत्ति शील खेत में गिरे हुए अन्न का संग्रह उन्सनम थोक बाजार में गिरे हुए अन्न का संग्रह तेनो उस उपाय के द्वारा यह निवर्तित प्राप्त करके साधु महान साधुओं के सत्क्रिया समस्त पुण्य कर्म कथम कैसे विगर्हम निंदनीय नु निस्संदेह करोमि करुंगा अधीश्वरा हे लोकों के महान अधीक्षकों पौरधसम पुरोहित कर्म ऋष्यति प्रसन्न होता है जेना जिच्छे दुर्मति अल्पज्ञानी। अनुवाद हे लोकपाल आप लोग बोलिए सच ब्राह्मण नहीं है जिसके कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है वह शिलांचन वृत्ति से ही अपना अंदर अपना उदर पोषण करता है। दूसरे शब्दों में वह खेतों में गिरे हुए और बड़े बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न का बिनता है। इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण जो वास्तव में तपस्या के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार का भरण करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता रहता है, जो ब्राह्मण पुरोहित कर्म द्वारा धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है वह अत्यंत तुच्छ मन वाला होता है। बताओ मैं इस पुरोहित पुरोहिति को कैसे स्वीकार करूं? तत्पर उच्च श्रेणी का ब्राह्मण अपने शिष्यों या जजमानों से कोई दक्षिणा नहीं लेता। वह तपस्या के संलग्न होकर खेतों में जाकर किसी किसानों द्वारा ब्राह्मणों के लिए छोड़े गए अन्न को एकत्र करना श्रेष्ठ समझता है। इसी प्रकार ऐसे ब्राह्मण हाटों में जाते हैं जहाँ व्यापारी अन्न का थोक क्रय विक्रय करते हैं और इस प्रकार वहाँ व्यापारियों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा अन्न इकट्ठा करते हैं। इस तरह ऐसे उच्च ब्राह्मण अपना तथा अपने परिवार का भरण करते हैं। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं मांगते। उन्होंने क्षत्रिय या वैश्य की तरह ऐश्वर्य में जीवन बिताने नकल करने की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह कि शुद्ध ब्राह्मण स्वेच्छा से गरीबी का जीवन स्वीकार करता है और भगवान की अनुग्रह पर ही पूर्णतः निर्भर कर रहता है। बहुत समय नहीं बीता नवद्वीप के निकट कृष्णनगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसे स्थानीय जमींदार ब्रज कृष्णचंद्र ने आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए, किंतु ब्राह्मण ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने गृहस्थ जीवन में ही अधिक प्रसन्न है, क्योंकि उसे अपने शिष्यों से चावल मिल जाता है और इमली का पत्तियों की वह सब्जी बना लेता है। उसे जमींदार से सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष यह निकला कि ब्राह्मण की भले ही अपने शिष्यों से प्रभुत धन प्राप्त हो, किंतु उसे चाहिए कि पुरोहिती से प्राप्त इस धन की वह अपने व्यक्तिगत लाभ में न रखे, उसे वह परमेश्वर की सेवा में लगाए। यहाँ शिला प्रभुपाद का तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, परंतु हम लोग कितना स्वीकार कर सकते हैं, कितना हम लोग अपना जीवन में आचरण कर सकते हैं, ये देखने का विषय है। पहले मैं सबसे समझ जाता हूँ, मैं हिंदी भाषी नहीं है, हमारा भाषा बांग्ला है। हम बोलने की कोशिश करेंगे, कोई भूल त्रुटि हो कोई गलती हो तो आप क्षमा कीजिए। ये अच्छा श्लोक है कि ये श्लोक में भगवान विश्वरूप देवताओं से बात है ये आदर्श ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण कैसे भजन पसंद करे। ब्राह्मण कभी धनी नहीं होता है और अर्थ का पीछे नहीं पड़ता है। तो ब्राह्मण कैसे परिवार प्रतिपालन करें। ब्राह्मण का कर्म संबंध में शास्त्र में बताया ये षटकर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशरद। ब्राह्मण षट कर्म में निपुण है, ऐसे कोई जन्म सूत्र में ब्राह्मण नहीं होता है। शास्त्र में कहा गया जन्म न जायते शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र है। शूद्र मतलब जो अज्ञानी है, जो जिसका कोई ज्ञान नहीं है। कोई बचपन ब्राह्मण घर में जन्म हुआ तो उनको कोई ज्ञान होता है? ज्ञान तो नहीं होता है। वो टाटी में हाथ लगाते हैं, टाटी में सोता है, प्रसाद प्रसाद भी करते हैं, खाते हैं पीते हैं, और कोई ज्ञान नहीं है तो उनको सिखाना पड़ता है। तो जन्म ना जाए तो शूद्र, जन्म सूत्र से सब लोग शूद्र है। शास्त्र में बताए हैं संस्कार भवित दीजो, जो संस्कार शिक्षा से वो दीजत्व तो प्राप्त होते हैं। वेद पढ़ेत भवित विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो जो वेद पढ़ लेते हैं, वेद स्वीकार करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, तो उनको विप्र कहा जाते हैं। वेद पढ़े ब्रह्म जानते, और जो ब्रह्म को उपलब्धि करते हैं, परमेश्वर भगवान को उपलब्धि करते, वो ब्राह्मण कहा जाता है आशी। परंतु ये दुनिया में हम लोग देखते हैं जो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ वो स्वयं खुद को ब्राह्मण स्वीकार करते हैं, परंतु ये प्रभुपाद जी स्वीकार नहीं किया, ये शास्त्र में स्वीकार नहीं किया, ये पूर्वतन आचार्य लोग स्वीकार नहीं किया। पूर्वतन जस जत लखनंग प्रक्तंग, सनातन गोस्वामी जी ने बताया जस जत लखनंग प्रक्तंग पुंस वर्ण अभिव्यंजकम जद अन्नात्रापि दिशत तत्य नैव विनिर्दिशत। जिसका जो जिसका अंदर जो लक्षण प्राप्त देखा जाते हैं उसके उसी तरह मान सकते हैं हम। वो किसी का क्षत्रिय लक्षण है तो क्षत्रिय मान सकते हैं, किसी ब्राह्मण का कोई लक्षण है तो ब्राह्मण मान सकते हैं, वैश्य शूद्र का कोई लक्षण उनको देखा जाए किसी के अंदर तो उनको ब्राह्मण वैश्य शूद्र मान सकते हैं हम लोग। हम जन्म सूत्र मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस क्योंकि सनातन गोस्वामी ऐसा बात है। और ब्राह्मण का कोई गुण है, ब्राह्मण का कोई कर्म है, जिसके श्रीमद् भगवद गीता में बताया, श्रीमद् भागवतम में बताया बहुत सारे श्लोक में, जो ब्राह्मण का क्या गुण होता है, ब्राह्मण का क्या कर्म है। तो इस श्लोक में बताया षट कर्म निपुण, ब्राह्मण सय कर्म में निपुण होता है। हम देखते हैं कभी कभी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ परंतु वो काम कर रहे शूद्र का, हम कैसे ब्राह्मण मान ले। जैसे कोई डॉक्टर का पुत्र वो स्वयं डॉक्टर मान लेगा, वो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, डिग्री नहीं है, उनका सर्टिफिकेट नहीं है, वो मेडिकल से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो हम डॉक्टर मान लेगा उनको? डॉक्टर का पुत्र होने की भी बात भी डॉक्टर मान लेगा? हम कभी नहीं मानते। कोई मैजिस्ट्रेट का पुत्र है वो स्वयं बोलेगा हम भी मैजिस्ट्रेट हूँ, हम विचारक हूँ, हम मान लेंगे उनको आइन नहीं। तो हम कैसे मानते हैं? हम लोग इतना अंध हो गया, हम लोग मान लेते हैं ये दुनिया में जितना ब्राह्मण घर में जन्म हुआ हम ब्राह्मण मान लेते हैं, वो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होता है। नहीं, अभी दुर्गा पूजा का टाइम है तो दशमी दिन में वो दुर्गा पूजा के में विसर्जन होता है, देवी के विसर्जन का टाइम। सब लोग पितृपुरुष के लिए तर्पण करते हैं तो ब्राह्मण का अकाल पड़ जाते है, बहुत कमती हो जाते है। कलकत्ता में मैं देखा कितना बहुत सारे ब्राह्मण, सारे कलकत्ता का लोग, सारे बंगाल का आदमी ने देखा, वो गंगा में आते हैं, वो पितृपुरुष के लिए तर्पण करते हैं विजयादशमी के दिन। अभी तो दुर्गा पूजा शुरू, आज अष्टमी है ना सप्तमी। तो ब्राह्मण का घर के जो ब्राह्मण है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, वो ब्राह्मण का पुत्र है, वो भी आ जाते हैं। वो कुछ रुपया तो मिल जाएगा ना, किसी को तर्पण कराएगा तो एक ब्राह्मण तर्पण कराते हैं। जैसे वो हाथ में पानी, सब लोग को बोलते हैं जैसे हाथ में पानी लो, तो पानी लिया, बोलो मंत्र उच्चारण कीजिए, तो मंत्र उच्चारण करते हैं वो लोग। जैसे ब्राह्मण बोलते हैं ऐसे जजमेंट भी करते हैं, तो बोलते इदम अर्घम ओम सर्व पितृपुरुष चितपटंग मंत्र बोला, तो वो उसके समझ में नहीं आते चितपटंग क्या है। चितपटंग समझ में आते हैं आपको? उसका अर्थ है इदम वर्गम ओम सर्व पितृपुरुष तृप्ततम, हे हमारा अर्घ, ये हमारा ये गंगा पानी अर्घ स्वीकार करके हे पितृपुरुष, समस्त पितृपुरुषगण आप लोग तृप्त हो जाए। तो तृप्ततम, तो वो तो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तो ऐसे मंत्र उच्चारण करता है इदम वर्गम ओम सर्वदेव देवी सर्व पितृपुरुष चितपटंग, चितपटंग मतलब वो पेपर में भी आया बंगाल का। तो वो तो हम तो शिक्षित होना चाहिए। अच्छा से मंत्र मंत्रतंत्र विशारद षटकर्म निपुण विप्र मंत्रतंत्र विशारद, वो मंत्रतंत्र विशारद होना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है वो मंत्र में विशारद होना चाहिए। परंतु कलयुग में शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध मंत्र उच्चारण करने के ब्राह्मण शुद्ध नहीं है। बहुत सारे सब ब्राह्मण बंगाल में देखा पा, इधर का पता नहीं है, सब ब्राह्मण मछली अंडा खाता है, मांस खाता है, तो कैसे शुद्ध होता है? प्रभुपाद बोला जो दोज हु ईट मीट इज कॉल्ड मिलेच्छो, प्रभुपाद ऐसे बताए जो मांस खाता है तो वो मिलेच्छो है, जवन है, वो शूद्र है, शूद्र का अधम है। तो उनसे मंत्र उच्चारण करते आप कैसे पवित्र हो जाएगा? नहीं, पवित्र नहीं हो सकते। इसे जन्मस्थल और षटकर्म निपुण विप्र क्या है? ब्राह्मण का साय कर्म है जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। जजन करना, वो भगवान का अर्चन करना, किसी को सिखाना, काम में लगाना। पठन पाठन, वो शास्त्र में अध्ययन करना, सबको सिखाना। पठन पाठन दान प्रतिग्रह, दान लेना, और ब्राह्मण के पास जितना दान है वो प्रयोजन के अतिरिक्त तो नहीं रखेगा, वो भगवान के सेवा में लगाए, दूसरा के सेवा में लगा देंगे। जैसे प्रभुपाद, जितना धन प्रभुपाद के पास आए प्रभुपाद सब समाज में सेवा के लिए, भक्तों के सेवा के लिए मंदिर बनाए, भगवान के सेवा के लिए, प्रसार के लिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाया। ये प्रभुपाद आदर्श उदाहरण है हमारा। प्रभुपाद जी ये आदर्श ब्राह्मण है। प्रभुपाद तात्पर्य में बताया जो जिसको दान देना चाहिए वो इस्कॉन का दान देना चाहिए, इस्कॉन ब्राह्मण है, और इस्कॉन का कोई टैक्स लेना नहीं चाहिए सरकार को, क्या ना इस्कॉन वो भगवान का सेवा में लगाते हैं। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण दान ग्रहण कर सकते हैं, भगवान का ब्राह्मण के पास कोई दान आए तो वो भगवान का सेवा में लगाते हैं। एक प्रभुपाद जब अमेरिका में था प्रसार करने के लिए गया था, तब एक भक्त लोग आया, देखा एक जोगी इंडिया से गया उधर भारत से, तो वो कोई आदमी उनसे डॉलर देते हैं, तो वो से नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं डॉलर स्पर्श नहीं करते हैं, डॉलर नहीं छुएंगे, हम रुपया नहीं लेते हैं। तो वो प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद को बताया, स्वामी जी स्वामी जी देखिए ये कितना बड़ा जगी है, वो ये मानी ये रुपया और डॉलर स्पर्श नहीं करते। बोलते वो अच्छा, प्रभुपाद बताया ठीक है ये काम कर, तुम बहुत सारे डॉलर मुझे दे दो और एक फोटो खींच लो, मैं सब कुछ लेते हैं लेंगे, एक फोटो खींच लो और पेपर में दे दो, दे दो ये भारत में एक स्वामी जी आया कितना डॉलर लेते हैं। क्योंकि वो नहीं जानते है, मूर्ख है, वो नहीं जानते डॉलर क्या करना है, रुपया क्या करना है, वो नहीं जानते भगवान का सेवा में लगाना है। ये रुपया लक्ष्मी देवी है, ये लक्ष्मी को भगवान का सेवा में लगाना जाता है। तो हम जानते हैं अच्छा तरह जो रुपया कैसे भगवान का सेवा में लगाएंगे, इसलिए हमारे पास दे दो जितना डॉलर है और फोटो खींच लो पेपर में डाल दो, हम रुपया भगवान का सेवा में लगाएंगे, जितना डॉलर है दे दो। तो भक्त जानते हैं, अच्छे भक्त अच्छे ब्राह्मण जानते हैं रुपया के क्या सदुपयोग करते हैं, करना चाहिए कैसे। परंतु बाहर का आदमी वो कोई कोई मार्केट वैराग्य दिखाता है, जैसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं पीना चाहिए, अच्छा नहीं है। परंतु एखने षट कर्म निपुण, तो ब्राह्मण कैसे चलेंगे? ब्राह्मण से दान आते वो दान फिर भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, जनगण की सेवा में लगा देते हैं, तो ब्राह्मण का परिवार कैसे चलेंगे? जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह साय कर्म है, साय कर्म तीन कर्म से रुपया आएगा, उनको इनकम होगा, और तीन कर्म से उनको रुपया नहीं आएगा। जजन करेगा, आप पूजा करें घर में, आपको कोई रुपया देगा? नहीं देगा। किसी का जाजन करेंगे, किसी का पूजा पुरोहित करेंगे तो कुछ दक्षिणा मिलेगा। और पठन पाठन, आप घर में शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करेंगे तो उसको रुपया नहीं आएगा, तब तो संसार कैसे चलेंगे? गृहस्थ भक्त कैसे? ब्रह्मचारी की अलग बात है, ब्रह्मचारी मंदिर मेंटेनेंस करते हैं, सब कुछ भगवान को दे देते हैं, मंदिर मेंटेनेंस करते हैं, ब्रह्मचारी का अलग। जो गृहस्थ ब्राह्मण है, गृहस्थ भक्त है, तादर वो कैसे परिवार चलाएंगे, कैसे परिवार प्रतिपालन करेंगे,
इसलिए तो तीन कर्म से रुपये आ सकते हैं, जाजन करने से, पाठन करने से और प्रतिग्रह करने से, तो दान ग्रहण करने से। और दान देंगे आप तो आप आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तीन कर्म से चला जाता है अर्थ, तीन कर्म से अर्थ आते हैं, तो ये तीन कर्म से आप लेते हैं। तो ज़्यादा रुपया लेने से वो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नहीं रहते हैं, वो रुपया में ध्यान लग जाता है, इंद्रिय तर्पण में ध्यान लग जाता है। जो ब्राह्मण इंद्रिय तर्पण करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो ब्राह्मण का गुण उनको नष्ट हो जाता है। तो ये एक शास्त्र भागवत में कहानी है, हम कभी कभी देखते हैं, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन में तो संघ का डिवोटी बड़े बड़े धनी आदमी के पास जाते हैं, रुपया लेके आते हैं, अपना के लिए नहीं, जो अपना के पास खर्च होता है वो दुखी हो जाता है बाद में। परंतु जो भगवान का सेवा लेते हैं ठीक है, एक पॉइंट यही है, जो ये दुनिया का सबको भावना यही है रावण का तरह है। रावण क्या किया, वो लक्ष्मी देवी को अपहरण कर लिया भगवान से और अपना भोग करने चाहते थे। और भक्त का मूल्य क्या है, भक्त का स्थान वो हनुमान का तरह है, हनुमान वो रावण का सवंश में मार दिया, उनको लक्ष्मी देवी के लेके आया और राम के पास भेज दिया, राम के पास दे दिया। तो भक्त का है वो दुनिया का जो भगवान का अर्थ चोरी करके अपना भोग करता है, ये रावण का तरह है। ये कोई संपद दुनिया का नहीं, संपद किसी का नहीं है, ये सब भगवान का है। तो भगवान का संपद भगवान के पास आना चाहिए। तो भक्त लोग क्या करते हैं, विषय के पास जाते हैं, उनसे अर्थ लेते हैं, वो भगवान के मंदिर में देते हैं, भगवान के सेवा में लगा देते हैं, तो सदुपयोग हो जाते हैं, ये अच्छा काम करते हैं। परंतु वो अपना लिए नहीं करते हैं, क्योंकि भागवतम में ब्राह्मण का संतों का लिए एक श्लोक बताया कैसे बिताना चाहिए। ये अपना के लिए धनाढ्य व्यक्ति के और जो धनमद महत्व है उनके पास नहीं जाना चाहिए। शास्त्र में बताए सिरानी न पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवंग्रीप सरित शुष्यन रुद्ध गुहा किमजित अवति न प्रसन्नन कस्मात भजन्ति कवय धन दुर्मदंधन। संत आदमी ब्राह्मण आदमी वो धनाढ्य व्यक्ति के वो जिसके पास बहुत सारे धन है, धन में मत्त है, उसके बाद क्यों जाए, उनको खाना पीना तो बहुत सारे मिलते हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए। यहाँ से इधर बताया चिरानी न पोथी, रास्ते में कोई टूटा हुआ फटा हुआ कपड़ा नहीं मिलता है, कोई रास्ते में फेंक दिया पुराना कपड़ा वो पहन सकते हैं। चिरानी न पोथी न शांति दिशांति भिक्षा, कोई भिक्षा बंद कर दिया, कोई घर घर में जाएंगे भिक्षा करने के लिए तो भिक्षा बंद कर दिया आज दुनिया में नहीं, भिक्षा मिलता है, भिक्षा करके अपना जीवन बिता सकते हैं। दिशंति भिक्षम नैभांगरीपा पर्वती सरित विशेषण, जो नैभांगरीपा जो वृक्ष है वो कि फल देना बंद कर दिया, अभी तो फल होते हैं, जितना नदियां तो सूख गया क्या, अब पानी नहीं है, पानी वहां से पी सकते हैं। रुद्धा गुहा पहाड़ का जो पर्वत का गुफा बंधा गया क्या, हम स्थान नहीं है रहने के लिए संत के लिए, हिमालय में जाते हैं तो देखते हैं, हम लोग इधर तो गुफा में नहीं रहते, हम लोग इधर में बिल्डिंग में रहते हैं, प्रासाद में रहते हैं, परंतु हिमालय में जाते हैं तो बहुत सारे संत आदमी गुफा में रहते हैं, छोटा केव में रहते हैं। रुद्धा गुहा क्यों अजित अबोती न प्रसन्नम, और परमेश्वर भगवान अंतिम में परमेश्वर भगवान सबको प्रतिपालन करते हैं, तो हम खाने पीने के लिए इतना प्रयास क्यों करें, भगवान सबको पालन करता है, सबको प्रतिपालन करता है, सबको खिलाता है पिलाते हैं, तो हम भक्त होने के बाद भी हम इतना धन के प्रति इतना लालच क्यों रहे। शास्त्र में बताया किस कस्मात भजन्ति कवय धन दुर्मदंधन, हम धन दुर्मदंधन जो व्यक्ति है तो उसके पास क्यों जाए। तो भक्त लोग जाते हैं क्योंकि वो भगवान के सेवा में लगाते हैं, कभी कभी जाते हैं। तो जैसे देखिए गोस्वामी का हमारा जो सौर गोस्वामी हमारा आदर्श है, उनको परंपरा में है, हम लोग गोस्वामी परंपरा में है, परंपरा क्या है, वो लोग क्या वो बड़े बड़े जमींदार थे, राजा थे, जमींदार का पुत्र थे, तो वो सब कुछ छोड़कर अर्थविद्या सब कुछ छोड़कर भिक्षु का तारा इधर सूखा रोटी चाना सिवाय भोगो परिहार, सब भोग परिहार करके सूखा रोटी और चाना खाते थे। जैसे एक टाइम रूप गोस्वामी पद जीव गोस्वामी पद को निकल दिया उनके घर से, एक एक विद्वान को डिफीट किया, इसलिए बोल से ये विद्वान होने के जगह ये नहीं है, ये भक्ति लेने के जगह है वृंदावन, तो उनको डिफीट किया तो उनको निकाल दिया, तो दुख से चला गया जमुना किनारे में, घर में नहीं गया जीव गोस्वामी पद। वृंदावन जिधर एक क्रोकोडाइल रहते थे एक गुफा में उधर आश्रय लिया था, और कुछ किसी के पास से कुछ नहीं मांगा, थोड़ा वो मिट्टी खाते थे जीव गोस्वामी पद, भिक्षा भी नहीं लेते। और वो उसी टाइम जो षट संदर्भ जो टीका एक एक पत्ता लिख कर वो पानी में बहा देते थे, और जीव सनातन गोस्वामी स्नान करने जाते थे वो उठा लेते थे सनातन गोस्वामी, वो देखा कौन लिखा इतना सुंदर, इतना कौन लिखा ये पानी में बहा दिया इतना सुंदर, वो कलेक्ट करते थे, हर रोज स्नान करने के जाते थे एक एक पत्ता मिलते थे उनको। ऐसे माफिक वो षट गोस्वामी जो षट संदर्भ का सिद्धांत भागवत का सिद्धांत मिला था उनको। तो एक दिन वो कुछ दिन नहीं आया वो पत्ता, तो वो देखा क्यों नहीं आते, कौन लिखा, वो ढूंढते हुए भिक्षा करते हुए जमुना किनारे किनारे जाते हैं, तो एक घर के गया भिक्षांग देही और माता जी भिक्षा कुछ रोटी चावल दीजिए ऐसे बताया, तो सुना नहीं सुना, ठीक है थोड़ा अपेक्षा करो मैं काम में व्यस्त है। और दूसरा टाइम राधे श्याम किया तो बोले थोड़ा रुको थोड़ा मेरे थोड़ा काम है घर में व्यस्त। तीसरा टाइम जब किया तो बहुत गुस्सा में आ गया माता जी ब्रजवासी माता जी, अब क्या आप इतना धैर्य नहीं देते, हमारे पास एक बाबा जी है इधर, वो किसी से कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ मिट्टी खाते हैं और रोज भी रह जाते हैं भजन करते हैं, आप इधर खाने पीने के लिए इतना तरसते हैं। बोल से कौन सा बाबा जी, तो बोल से ठीक है वो सनातन गोस्वामी तुरंत उनको पूछा हम मुझे लेके चलिए उधर, तो उन्होंने लिखा देखा जीव गोस्वामी तो बहुत दिन से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो उनको सिर्फ हड्डी बचा है और शरीर पूरा चला गया और कुछ लिख में शक्ति नहीं है और चलने की शक्ति भी नहीं है उनके शरीर में। तो सनातन गोस्वामी उनको उठा लिया और रूप गोस्वामी के पास लेके आया, अब बता जीवे दया पर तो वो धर्म परम धर्म जीवे दया तब वो कोई, आप तो बोलते हैं जीवे दया परम धर्म, जीवे दया कृष्ण नाम, जीवे दया परम धर्म, जीव के दया करना कैसे दया करना उससे कृष्ण नाम दिया, और जीव गोस्वामी इतना अनादर क्यों आपके पास, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को बहुत सारे डांटा है, तुम जीव दया परम धर्म लिखते है जीव के इतना अनादर, ये जीव नहीं है, जीव गोस्वामी तो जीव है, हम लोग जैसे जीव है सब लोग जीव है, तो जीव के दया करना परम धर्म है, तो जीव गोस्वामी घर से निकल दे ऐसे मत होते है, तो उनके फिर रूप गोस्वामी लिया। तो ऐसे में फिर सड़ गोस्वामी बिताया गुहा से, इधर जे अकिंचन नाम इस श्लोक में बताया, अकिंचन नाम शिलंचन, अकिंचन ये आप लोग जानते हैं, इधर उन पुरुषों का जिन्होंने संसार से विरक्त होने के लिए तपस्या करते करनी स्वीकार के लिए स्वीकार की है, ये अकिंचन है, अकिंचन गोचरम जो धनवाद में मर्त होता है वो भगवान को उनको भगवान मिलता ही नहीं है, इसलिए महारानी कुंती देवी वो भागवतम में बताया है, महादेव ने भगवान से प्रार्थना किया, जन्म ऐश्वर्य सूत्र शिवी एध मानम अध पुमान नैवारति अभिधातुम वै तम अकिंचन गोचरम। भगवान अकिंचन गोचरम, निष्किंचन का संपद है भगवान, जिसके पास जड़ो आसक्ति नहीं है। निष्किंचन दो अर्थ है, वैराग्य का दो अर्थ है, एक अर्थ है जड़ संपद को अवहेलना करना, जड़ नहीं लेता है, जड़ डिटैच है, विरक्त है, और कृष्ण का प्रति आसक्त है। तो जो कृष्ण का प्रति आसक्त है वो जड़ संपद का विरक्त है, तो वो असली वैराग्य है। परंतु ये दुनिया का अधिकांश लोग ही है, कृष्ण के भी बुरा वैराग्य है और जड़ संपद के प्रति आसक्ति है, उल्टा है। और जिसका जड़ संपद विरक्त है, कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है, वो वैराग्य वैराग्य नहीं है। जड़ संपद में आसक्त है, आसक्ति नहीं है, परंतु कृष्ण भी आसक्ति है तो ठीक है, वो वैराग्य ठीक है। जो जड़ संपद में आसक्ति नहीं होना चाहिए भगवान के पास जाने के लिए, तो इसलिए कुंती देवी बात है जन्मैश्वर्य सूत्र शिविर, चार हमारे लोग का प्रतिबंधक है भगवान के पास जाने के लिए। जन्म, उच्च कुल में जन्म होना, जन्म लेना, ऐश्वर्य, बहुत सारे धन संपत्ति प्राप्त होना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत, बहुत सारे पांडित्य अर्जन करना, बहुत सारे पंडित होना, और श्री, बहुत रूपवान होना, रूपवान होना, देखना बहुत सुंदर है, रूप मिलना, ये चार ऐश्वर्य में मत हो जाते हैं आदमी और भगवान को भूल जाते हैं। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, यधमानम अधोपमान नैवारतिम अभिधातुम वै अचिन, ये लोग भगवान को कभी नहीं जान पाते। भगवान अकिंचन गोचरम, जो निष्कंचन भगवान उनको अच्छे लगते हैं, भगवान को मिलता है उन लोग को। अकिंचन जड़ो जागतिक बंधन से मुक्त होते हैं। और इधर शीलांशन, शील कथ का अर्थ क्या है, ये श्लोक में बताया। शीलांशन बहुत महत्वपूर्ण है, शीलांशन मतलब जो स्वस्थ क्षेत्र में, खेत में पड़ा हुआ जो स्वस्थ है वो स्वस्थ उठा लेता है, ये शील है। और उंचन मतलब बाजार में जो व्यापारियों के द्वारा जो कुछ कुछ समय कुछ स्वस्थ उधर फेंक देते हैं तो वो उठा लेते हैं, कुछ सब्जी भी। हमारा इस्कन जब शुरू हुआ, पहले पहले मैं गुरु महाराज से बहुत सारे सुना है, इसलिए सुभाषण गुरु महाराज बताया, जब पहले कैसे वो लंदन में, मतलब गुरु महाराज इसलिए सुभाषण गुरु महाराज लंदन में योगदान किया प्रभुपाद मूवमेंट में, तो वो उसी टाइम गुरु महाराज उसी टाइम किया क्या, तो देखा जब बाजार में जो पुराना सब्जी फेंक देते हैं वो बहुत, हमारे इस्कन का डिवोटी किया है, 3 बजे उठ जाता है, 4 बजे मंगल आरती करता है, 4:30 बजे उसके बाद वो चला जाता है, ये बाजार के जो फेंक देता है वो सब्जी उठा लेता है। दूसरा कोई कोई सोसाइटी है वो भी लेता है, तो वो लोग जब जाते हैं उनको मिलता ही नहीं। तो हमारा जो इस्कन डिवोटी था उसी टाइम, सब पहले जाकर वो पुराना सब्जी जरा दाग हो गया, थोड़ा नष्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, तो फेंक देते हैं, तो वो उठा लेके सब्जी भक्तों के लिए और गेस्ट संडे फीस्ट के लिए वो बनाते हैं और भगवान का निवेदन करके प्रसाद देते हैं, सबको बांट देते हैं। तो उसी टाइम कैसे, ये ब्राह्मण का काम है, जो परित्यक्त हैं वो ले सकते हैं, जो फेंक दिया है उठा सकते, तो किसी के पास मांगना नहीं। तो ये जो शील और उंचन है, और जो भागवतम ने एक श्लोक में बताया, श्रीमद नारद मुनि बताया, जो श्रीमद भागवतम का सप्तम स्कंद 11 अध्याय में जो चातुर्वर्णों का बारे में, चातुर्वर्णों के बारे में बताया, उसी तरह ब्राह्मण का कर्तव्य संबंध में बताया। ब्राह्मण 5 प्रकार से जब किसी को नहीं मिलता है, खाना पीना नहीं मिलता है कर्म से, दक्षिणा से, तब दूसरा कर्म कर सकते हैं। ये पहले ये 5 कर्म बताया, रीतो अमृत मृत प्रमित सत्यान्वित, क्या क्या कैसे जीवन बिताना है ब्राह्मण को। तो जैसे जैसे रीत जो स्वस्थ क्षेत्र में स्वस्थ परित्याग किए हैं वो लेके आना है, इकट्ठा करना इसके रीतो बोलते हैं। अमृत अजाचित वित्ती, अमृत मतलब अजाचित वित्ती, अजाचित मतलब किसी के पास मांगता ही नहीं, वो भगवान का इच्छा से जो कुछ मिलता है वो लेते हैं, वो स्वीकार करते हैं। जैसे माधवेंद्र पुरीपाद जब गोवर्धन में गोविंद तट पर बैठे थे तब उस पूरा दिन कुछ नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं मांगा, पूरा दिन हरि नाम करते रहे और उसी टाइम भगवान देखा, क्योंकि राधारानी का बौर है, कृष्ण का बौर है राधारानी के प्रति। जब राधारानी एक समय कृष्ण के पास एक बौर मांगा, बोले आपको देने के लिए मेरा किया है, मैं तो सब कुछ आपके लिए है। तो राधारानी बोल नहीं, वृंदावन में जो भजन करेगा उसको कभी खाना पीना का कोई कमती नहीं होगा, यह मेरा बौर दीजिए। तो भगवान कृष्ण स्वीकार कर लिए। जो सब कुछ देखिए, कितना धनी का आदमी है, गरीब का आदमी है, जो भी है, जो आते हैं इधर वृंदावन में कोई भगवान का भजन करते हैं, उनको कभी खाना पीना का असुविधा नहीं होता है, बर मिला है। तो राधा ने बोला ठीक है, राधा ने कब बर दिया। तो देखा एक दिन उनको कुछ नहीं मिला, किसी के पास मांगते नहीं, मांगने से मिल जाता है, ब्रजवासी के पास वृंदावन में मिल जाता है, परंतु वो किसी से मांगता नहीं। तो पूरा दिन के बाद शाम के टाइम भगवान कृष्ण स्वयं एक कटोरी दूध लेकर माधवेंद्र के पूरी पास आया। उसके बाद बोला मैं, आप जानते हैं कहानी ये कैसे भगवान स्वयं आकर दूध लेकर खिलाते हैं। वैसे जो भगवान का भजन करते हैं वृंदावन धाम में, तो उनको कुछ असुविधा तो नहीं होता है, कुछ तकलीफ नहीं होता है। क्यों? जैसे हम भगवत गीता में एक कहानी है, आप लोग जानते हैं, जो अर्जुन मिश्र वो ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण हर रोज गीता पढ़ते थे और भिक्षा से जीविका निर्वाह करते थे। तो एक दिन देखा वो जब अनन्य चिंतन तो माम श्लोक पढ़ा, तो चिंतन किया, थोड़ा संदेह भी हुआ। हम लोग भिक्षा करते हैं, माधुकरी करते हैं, भिक्षा मिल जाते हैं, हम भरण पोषण कर लेते हैं। तो इसी श्लोक में बताएं, अनन्य चिंतन तो माम जे जन पज्जु पाशते तेषां नित्याभिजुक्ता नाम जोगक्षेमं वहम अहम्। जो दूसरा कोई चिंतन नहीं करते हैं, केवल भगवान का चिंतन करते हैं, उनको जो कुछ चाहिए वो भगवान स्वयं उनको सर पर लेकर उनके पास पहुंच देते हैं, उनके पास दे देते हैं। और जो कुछ उनके पास है भक्तों को, जो भगवान का भजन करते हैं, वो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तो उनको थोड़ा संदेह हो गया था क्या, तो भगवान स्वयं लेने की क्या जरूरत है, भगवान दे देते हैं, किसी के पास भेज देते हैं। तो वो परीक्षा भगवान प्रमाण किया था उसी टाइम जब हम स्वयं लेके आते हैं। तो वो ब्राह्मण एक दिन भिक्षा में गया तो भिक्षा नहीं मिला, तो उसी दिन कृष्ण बलराम स्वयं बहुत सारे चीज लेके आया ब्राह्मणी के पास, जे ब्राह्मण इतना सामग्री भेज दिया। उन्होंने जाने चाहते हैं, ठीक है हम अभी चले जाता हूँ, बोले नहीं नहीं हम पकाता हूँ, खाना पकाता हूँ, तुम खा के जाओ। वैसे नहीं नहीं ब्राह्मण फिर हमको डांटेंगे। तो अंडरलाइन किया था वो भगवद्गीता का श्लोक, ददम हम जोगक्षेम बहामी हम नहीं है, काट कर वो ददम हम कर दिया था। किसी किसी बोलते हैं हम देते हैं, हम बहामी हम मैं लेके जाता है, भगवान स्वयं लेके नहीं, किसी को बस भेज देते हैं। तो भगवान स्वयं लेके आते, परीक्षा के प्रमाण दिया, भगवान स्वयं लेके आते हैं भक्तों के पास, ऊपर प्रमाण दिया। ब्राह्मण जब आए देखा वो बोलकर दो बालक चला गया, और ब्राह्मण जब खाली हाथ में लटा, कुछ नहीं मिला, तो बोले नहीं क्या बोला, भिक्षा नहीं मिला, इतना भिक्षा था आप भेज दिया। बोले मैं किसी को नहीं भेजा। तब तो प्रमाण देखा जो दो बालक आया, वर्णना किया ब्राह्मण ने, तो उनको समझ में आया जो भगवान स्वयं देखे गया। तो भगवान इसे देते हैं, हमको इतना जरूरत नहीं है, जो भोजन करते हैं उनको खाने के पीने लिए इतना चिंतन नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण के जो साधारण वित्तीय है, ऋत अमृत मृत मित्र, मतलब जो दूसरा घर से भिक्षा करता है माधुकरी जैसा, प्रमित किसी काम किसी के किसी खेत में काम करता है, किसी कार्य करता है, और स्वतंत्र मन व्यवसाय वाणिज्य भी कर सकते हैं ब्राह्मण, जो आपातकाल में ब्राह्मण व्यवसाय वाणिज्य भी कर सकता है। और परंतु कभी स्ववृत्ति नहीं करना चाहिए। स्ववृत्ति मतलब कुत्ता है, कुत्ता का वृत्ति, और दूसरा घर में नकली करना, ये स्ववृत्ति है। ब्राह्मण को भी दूसरा घर में दूसरे का घर में शूद्र का तरह जो नकली करता है वो शूद्र है, नकली करना नहीं चाहिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण स्वयं कुछ कर सकते हैं, इसे नकली करना ये स्ववृत्ति बताया है शास्त्र में। ब्राह्मण को भी नीचे आदमी का घर में काम नहीं करना चाहिए, ये स्ववृत्ति है, कुत्ता का वृत्ति है। और भागवत में सप्तम अध्याय का ग्यारह सप्तम स्कंद में ग्यारह अध्याय में 16 नंबर श्लोक में ये भी बताया, चार प्रकार ब्राह्मण का वृत्ति बताया, शालीन, जाजावर, शील उन्छन। शील उन्छन तो आपको बताया, शालीन शालीन मतलब जो अजाति तो अजाति से वृत्ति, जो भगवान इच्छा से आए अजाति शालीन। जाजावर मतलब वो किसी कार्य किसी खेत में जाना, किसी से थोड़ा भिक्षा करके लेके आना, या जाजा सील मतलब वो जो खेत में परित्याग कर दिया, खेत में जो थोड़ा थोड़ा रह गया था वहाँ लेके आना। और उंचन माने हाटों में जो परित्याग किया वो लेना है, हाटों में बाजार में जो पड़ा हुआ है वो लेना है, ये उंचन। यही प्रकार से ब्राह्मण अपना को मेंटेनेंस कर सकते हैं और भगवान भजन कर सकते हैं, परंतु कभी दूसरा के धन के लालच में पढ़ना नहीं चाहिए ब्राह्मण को, ये शास्त्र का बात शास्त्र में बताया, ये आज श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है और सवाल है तो पूछिए। भगवान का कृपा पर लिखना निर्भर करना चाहिए, कैसे? जैसे आप भजन करेंगे तो अपना से आप खाना पीना का कोई असुविधा नहीं, भगवान सबको पिलाता है। ये दो एक कहानी बताता है छोटा सा। जैसे ये भगवान द्वारका में भगवान हर रोज बहुत समय लेट करके वो राजमहल में जाते हैं उनके पत्नी के पास, तो रुक्मिणी जी पूछा आप इतना देर क्यों करते हैं, इतना लेट क्यों करते हैं? वैसे देखो मेरा काम है सबको प्रतिपालन करना, बोले सब लोग अपना अपना कर्म करते हैं, वो से जो मिलता है वो खाते हैं, आप सबको कैसे प्रतिपालन करते हैं? ऐसा हर रोज होते थे, एक दिन नहीं ऐसा आपको जल्दी आना चाहिए, वैसे देखो मैं सबको प्रतिपालन करना ना देर होता है इसलिए, बोलते आप कैसे प्रतिपालन करते हैं? सब लोग तो अपना अपना कर्म से उपार्जन करते हैं, खाते हैं। बोलते नहीं मैं नहीं देखो किसी को कुछ नहीं देना है, मैं नहीं दूंगा तो उनको मिलेगा नहीं। तो देखो काल रात को तुम एक काम किया था, काल रात को जब एक कोटा में क्यों एक बैल में उनको चिटिया था उसको बंद कर दिया था, वो जब माता रुक्मिणी सिंदूर लगाया मांग में सिंदूर लगाया तो उसको उनको पत्र में जो बैल है उसको अंदर एक चिटिया था तो बंद कर दिया, तो बाहर जाएगा तो उनको कुछ खाना पीला मिलेगा, तो अंदर में कौन खाना देगा? तो भगवान कृष्ण बताया देखो वो चिटिया तुम बंद कर दिया तो उनको खाना नहीं मिला, उनको भी मैं खाना दिया तो वो तुरंत अंदर में गया, तो कृष्ण नहीं जानते थे, वो तो रुक्मिणी सिंदूर पढ़ने के बाद अंदर में रख दिया, उसके बाद वो रुक्मिणी जी गया अंदर से वो ढकना उठाया वो कोठा का देखा उसके अंदर एक चीनी का दाना है मिश्री का दाना है और वो एक चीटिया है वो पिपड़ा एंट वो आराम से वो खाते हैं उधर। तो भगवान सबको इसी तरह भगवान सबको भी खाता खिलाता है पिलाते हैं, हम सोचते हैं हम कर्म करते हैं उसके पास खाते नहीं, भगवान सब खिलाते नहीं खाएगा। बहुत सारे कहानी है शास्त्र में, अभी तो समय नहीं है फुर्सत का टाइम है, तो बहुत सारे कहानी है जो भगवान कैसे खिलाते हैं पिलाते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी तो गौर भक्तवृंद की जय, नीताई गौर प्रेमानंदी।